प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है श्रोताओं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय ही प्रेरणा मिल रही होगी। तो आइए श्रोताओं, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं, और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और इस पुस्तक के लेखक सुलेमान के द्वारा लिखी उन बातों को देख रहे हैं जो उसने अपने अनुभव के अंतर्गत लिखे हैं, और मैं समझता हूं कि यह हम में से हर एक के जीवन के लिए लाभकारी है। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम अपने नजरों को आसपास उठाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, हम पाते हैं कि लोग बीमार अवस्था में हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने हमें से हर एक को तंदुरुस्त रखा है, हमें ये जीवन दान दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज फिर से जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुनता है, निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी रूप से अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, दबाव में हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक या आर्थिक किसी भी रीति से प्रभु दुखी हैं, आप उन्हें भी शांति प्रदान करें। अपने वचन के द्वारा बातचीत करें, ताकि हर एक इस बात को समझ सके कि आप उनकी चिंता करते हैं, आपने उन्हें रचा है, आप चाहते हैं कि प्रत्येक जीवन आप में शांति को प्राप्त करे। पिताजी, आज के समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और सबोपदेशक के पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें। सबोपदेशक के पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगाड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। मित्रों, आज हम सुनते हैं कि गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं में भ्रष्टाचार है। गरीबों के लेखे में धनवान बनने वाले अनेक हैं। परमेश्वर इसका न्याय करेगा, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है। परमेश्वर को सब बातों की सुधि रहती है। मेरे विचार में यदि विश्वासी किसी परियोजना में भ्रष्टाचार देखे तो उन्हें वहां से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि वहां भ्रष्टाचार है और वह भ्रष्टाचारियों को दंड अवश्य देगा। इतिहास इसका गवाह है। परमेश्वर देखता है कि गरीबों को सताने वाले कौन हैं। जिस जगह गरीबों का शोषण किया जाए वहां की सरकार अवश्य गिर जाती है। इसका एक अति उत्तम उदाहरण है फ्रांस देश की क्रांति। यह एक अति भयानक ऐतिहासिक घटना थी। मेरे विचार में वह गरीबों पर पलने वाले कुछ लोगों को परमेश्वर का दंड था। परमेश्वर गरीबों के विषय में बहुत कुछ कहता है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए राज करने को आएगा, तब वे देखेंगे कि एक ऐसा राजा है जो कहता है कि वह गरीबों का उत्थान करेगा, तो वह करके दिखाता भी है। उस समय उनके लिए न्याय और धार्मिकता का राज्य होगा। वह उन्हें बेकारी अनुदान तो नहीं देगा, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपना अंश दान देगा और उसके हाथों न्याय पाएगा। अब हम सुलेमान का एक और प्रयोग को देखते हैं जो उसके संतोष के संबंध में है। हमने देखा है कि उसने विज्ञान प्रकृति के नियमों को देखा, उसने बुद्धि और दर्शन शास्त्र भोग विलास लौकिक सुख केवल इसी जीवन का निर्वाह भाग्यवाद स्वात्प्रायण जीवन आदि सब करके देखा और अंत में उसने धर्म निभाकर भी देखा। अब वह एक और प्रयोग कर रहा है। सुलेमान इस संसार का सबसे बड़ा धनवान मनुष्य होने के कारण धन का पूरा लाभ उठाता है। उसने बहुत सोना एकत्र किया। वह जो चाहता था प्राप्त कर लेता था। सुलेमान की धन संपदा राष्ट्र के पतन का कारण सिद्ध हुई थी, क्योंकि पड़ोसी राज्य उनकी धन संपदा को लूटना चाहते थे। परमेश्वर ने इसराइल के चारों ओर बाड़ा बांधा था कि उन्हें सुरक्षित रखे, परंतु वह बाड़ा टूट गया और परमेश्वर ने अन्य जातियों को स्वयं सेवा का अवसर प्रदान किया। मेरे मित्रों, धन का पीछा करके आनंद लेने के द्वारा संतोष पाना, इसके विषय में सुलेमान क्या कहता है आइए हम देखें। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। मेरे मित्रों, एक बहुत बड़ी कंपनी का अध्यक्ष वर्ष के अंत में वही खाते देखकर पाता है कि उसकी कंपनी को बहुत बड़ा लाभ हुआ है, परंतु उसे संतोष नहीं होता है। किसी के पास बैंक में बहुत पैसा है, परंतु इतना धन भी उसे संतोष प्रदान नहीं करता है। जैसा कि आज हम में से कई धनवान लोग हैं जिनके पास बहुत सारी धन और संपत्ति है, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं, अर्थात संतोष प्राप्त नहीं करते। धर्मशास्त्र धन को बुरा नहीं कहता है, परंतु धन से लगाव रखना बुरा है, क्योंकि पहला तीमुथियुस के पत्र 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जी हाँ, पैसे को बढ़ाने के लिए पैसा कमाना बुरा है। कंजूस सोचता है कि पैसा समतल है, इसलिए उसे जमा करना है, और उड़ाव पुत्र या उड़ाव मनुष्य सोचता है कि पैसा गोल है, इसलिए उसे लुढ़काते रहना चाहिए। दोनों विचार गलत हैं। पैसे के प्रति आपका क्या स्वभाव है, वह मुख्य बात है, वह मायने रखता है। पैसे का लोभ हानिकारक है। पैसे का लोभ मनुष्य को धन संचय के लिए प्रेरित करता है। वे अधिकाधिक धनवान बनना चाहते हैं, और पैसे का लोभ मनुष्य की हत्या करवाता है। इतना ही नहीं, परिवार में दरार उत्पन्न करता है, और आज बहुत सारे परिवार टूटे और उजड़े हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर पैसे का लोभ समा गया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मनुष्य समूह बनाकर पैसा कमाता है। मैं एक हास्य कलाकार के धन्यवाद के शब्द सुन रहा था। वह अपने नाटक में अन्य सब कलाकारों के सहयोग के लिए धन्यवाद दे रहा था। उसके भाषण में लेश मात्र भी हास्य नहीं था। उसने अपना भाषण अंत करते हुए कहा, हम सब इस कार्य में एकजुट हुए क्योंकि लालसा ने हमें एक दूसरे से बांधा था। जी हाँ, लालच ही के कारण उन्होंने एक होकर उस नाटक को सफल बनाया था। लालच ही बड़े उद्यमों को संभाले रहती है, माफिया को श्रृंखला में जोड़ती है, अनेक संस्थाओं को परस्पर जोड़ती है। जैसा कि हमारे देश में कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। आप जिस प्रकार का काम करेंगे उसी प्रकार के लोग आपसे जुड़ते हैं, अर्थात धन अर्जित करने के लिए आप किसी भी तरीके को अपनाते हैं जो कि आपके जीवन के लिए हानिकारक है। मेरे मित्रों, मैं मानता हूं कि मनुष्य या संस्था इतना अधिक धन संचय करे जबकि बहुत से लोग गरीब हैं और आवश्यकताओं से घिरे हुए हैं, यह क्रांतिकारी सा लगता है, परंतु इस विषय में कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। जिन देशों में राजा राज करते थे वहां राजा के पास आवश्यकता से कहीं अधिक धन होता था और आम जनता गरीबी में जी रही थी। परमेश्वर इसे बुरा कहता है क्योंकि वह पैसे का लोभ स्वीकार नहीं करता, उसका दुरुपयोग स्वीकार नहीं करता। हमारे देश में अभक्त धनवानों की धन की लालसा गलत है। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर की महिमा के लिए कोई भी जन धन एकत्र करता है या धन एकत्र किया जाए तो अति उत्तम होगा। परमेश्वर की महिमा के लिए धनोपार्जन का परिश्रम अच्छा है। पैसे का उपयोग यदि उचित रूप से किया जाए तो वह एक महान कार्य होगा। लालच का एक ही उपचार है कि मन में यीशु का अंतर्वास हो, क्योंकि जब यीशु आपके अंदर में होगा तो वह लालच नहीं परंतु आपको भले काम के लिए उत्साहित करेगा। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। मेरे प्रियो, विकास इसलिए हो कि प्रदर्शन किया जाए तो वह अच्छा नहीं है। व्यापार, मसीही संस्था और कलीसिया में भी ऐसा ही होता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं वर्षों से एक बड़ी कलीसिया के साथ सेवा से जुड़ा हूँ। एक बड़ी कलीसिया में होने के कारण मैं गर्व करता हूँ, परंतु यह एक बड़ा सिर दर्द है, उसमें आनंद का कोई कारण नहीं है। मुझे प्रभु ने सिखाया है कि उसकी महिमा के लिए विकास करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है जो सदैव मेरे सामने रहता है। बस यही एक काम कर, परमेश्वर के वचन का प्रसार और प्रचार कर। मेरे मित्रों, हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक काम दिया है जिसे मुझे और आपको लगनता के साथ करना है, जैसा कि मुझे प्रभु के वचन को बांटने का काम दिया गया है। सबोपदेशक के पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मेरे मित्रों, मजदूर के पास अधिक भोजन नहीं होता है, अतः वह पेटू होने से बचा रहता है, और उसका पेट आवश्यकता से अधिक भरा ना हो तो उसे नींद भी अच्छी आती है। धनवान मनुष्य स्वादिष्ट भोजन खाता है क्योंकि उसके पास बहुतायत है, परंतु वह उस भोजन से ऊब जाता है और साथ ही उसे अपने धन संपदा की चिंता भी रहती है, और कई बार अधिक खाने के कारण पेट की गड़बड़ी और शिकायत से परेशान रहते हैं, और इस कारण कई लोग रात में सो भी नहीं पाते हैं। हम जब कई जगह पर सेवकाई के लिए जाते हैं और हमें होटल में ठहराया जाता है तो हमें एक अच्छा खाना भी खाने को मिलता है, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी होती है। मैंने देखा है कि वहां आने वाले लोग यद्यपि शांति आनंद पाने के लिए वहां पर आए हैं, मैं उनके चेहरों को देखता हूं कि वे कैसे आनंद रहित रहते हैं। उनके चेहरे गंभीर होते हैं, उन पर चिंताएं झलकती हैं। बड़े बड़े होटलों में आप ऐसे लोगों को अधिक संख्या में देख पाते हैं, वे किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। एक स्त्री को सेफ में उसके गहने रखने में आधा घंटा लगा। जब मैं काउंटर पर पहुंचा तो वहां के कर्मी युवती ने कहा कि वह वहां पहले भी आई थी और अभी दर्जनों बार आएगी और उनकी सुधी लेगी या पहनने के लिए कोई गहना निकालेगी और फिर रखने के लिए फिर से दोबारा आएगी। मैं अति प्रसन्न हुआ कि मेरी पत्नी के साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, परंतु उस स्त्री की समस्या बहुत बड़ी थी क्योंकि उसे 50 लाख के गहने संभाल कर रखना पड़ता था। धन से चिंता बढ़ती है। संभवतः यह एक कारण था कि परमेश्वर ने मुझे और कई लोगों को धनवान होने से बचा लिया है। मेरे प्रियो, यह बिल्कुल सच है कि जिसके पास अधिक धन है उसकी चिंता भी अधिक होती है। कई बार संपत्ति के कारण परिवार में तनाव होते हैं, अशांति होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दो भाई एक दूसरे की हत्या कर बैठे, अर्थात धन के कारण आप अपनी जान भी खो सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम धन का दुरुपयोग नहीं परंतु सदुपयोग करें, उन गरीबों के साथ में आप बांटें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। ध्यान दीजिए, धन संपदा मनुष्यों की सहायता करने की अपेक्षा हानि पहुंचाती है। गरीब मनुष्य धनवान जन से अधिक आनंदित रहता है। पौलुस प्रेरित ने कहा कि वह बढ़ती और घटती दोनों में रहना जानता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में वह स्पष्ट इस बात को कहता है, और मैं भी स्पष्ट कहूं तो मैं दोनों बातें ही करके देखना चाहता हूं। यदि आप अपने जीवन में इस बात को सीख लेते हैं कि गरीबी में आपको रहना है और अमीरी में भी रहना है तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यदि आपने गरीबी में रहना नहीं सीखा है तो जब आप किसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो आपके लिए बहुत कठिन होगा कि आप उसमें जीवन जिएं, क्योंकि आप आदि हो चुके हैं कि आपके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास सहकर्मी हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी देखभाल करते हैं। और इसी बात को लेकर के पौलुस कहता है कि मैं घटती में और बढ़ती में दोनों में रहना जानता हूं। मेरे प्रियो, आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए भला यही है कि हम परमेश्वर की निकटता में रहते हुए इन सारी बातों में रहना सीख लें, ताकि हम अपने आप को हानि से बचा सकें। सबोपदेशक 5 अध्याय उसके 14 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और जब वह धन किसी बुरे काम में उड़ जाती है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके पास हाथ में कुछ नहीं रहता। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि मनुष्य धन संचय करके जमा कर तो लेता है और अपने पुत्र को दे जाता है, परंतु वह उसे उड़ा देता है तो क्या होगा? आज कुछ लोग इस विषय में बुद्धिमान हैं, वे अपने पुत्र के नाम वसीयत करने की अपेक्षा ट्रस्ट बना देते हैं और पुत्र को सीमित मात्रा में ही पैसा दिया जाता है, जिससे कि उसकी धन संपदा नष्ट ना हो। आज अनेक धनवान मनुष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक पैसा नहीं कमाया है, उन्हें संपूर्ण धन संपदा वसीयत में प्राप्त हुई है। वे पैसे के उपयोग में बुद्धि काम में नहीं लेते हैं, परंतु वे समाज में अपना स्थान रखते हैं। यह हमारी वर्तमान समस्या है। मेरे प्रियो, यह सच है कि आज बहुत सारे लोग जिनके पास धन संपत्ति है उन्होंने उसे नहीं कमाया है। वे उसके मूल्य को समझते भी नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता या उनके दादा या दादी ने पैसा कमा करके उनके लिए छोड़ दिया है। आज कई ऐसे परिवार हैं, इस धन संपत्ति के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, उस संपत्ति का प्रयोग गलत रीति से किया जा रहा है, और यही कारण है कि हमारे वर्तमान समय में बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे जीवन में समस्याएं पाई जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब जाति की अपेक्षा मनुष्यों में गरीब और धनवान का विभाजन हो जाएगा। मेरे विचार में धनवानों को इसका बोध हो गया है, इस कारण वे राजनीति में उदार नीति अपनाते हैं। उनका पैसा तो कोई छू नहीं सकता, परंतु उनकी उदार नीतियां और प्रस्ताव परियोजनाओं के आर्थिक वहन में हमें कर से दबा देते हैं। सुलेमान इसे जानता था, अतः उसने इस परिस्थिति का भी उल्लेख किया है। सुलेमान ने देखा कि धन से संतोष प्राप्त नहीं होता है और न ही जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। मेरे मित्रों, सुलेमान ने इस बात को बहुत नजदीकी से देखा और समझा है, और यही कारण है कि वह अपने सारे अनुभव को इस रीति से हम तक पहुंचाता है, और वह कहता है कि सूर्य के नीचे अर्थात इस पृथ्वी पर हम धन से संतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर में संतुष्टि नहीं होती। जिसके पास जितना धन है वह उससे और अधिक दोगुना चौगुना कमाना चाहता है, क्योंकि यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 6 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अध्याय के साथ संतोष की खोज में सुलेमान का धन के द्वारा आनंद पाना समाप्त होता है, क्योंकि सुलेमान धन के द्वारा से आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, खोज कर रहा था। आइए हम पढ़ें सवोपदेशक की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र ने बताया कि वह एक होटल में ठहरा था और वहाँ उसने रॉकफेलर को भोजन करते हुए देखा। उसके भोजन में कुछ ब्रेड के टुकड़े और स्वास्थ्य संबंधित भोजन था। मेरे मित्र ने दूसरी टेबल पर से देखा कि उस होटल का वेटर मन मर्जी का मांस खा रहा था, जो वास्तव में महंगा मांस खा सकता था, खाने योग्य ना था, और जो वास्तव में वह मांस खरीद कर नहीं खा सकता था वह खा रहा था, क्योंकि वह वहां काम करता था। बहुत पैसा क्या करेगा यदि आप मन पसंद खाना भी ना खा पाए। जी हाँ, कई बार आपकी बीमारियां आपको उन चीजों को खाने की अनुमति नहीं देती है जिसे आप खा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा तो है परंतु आप नहीं खा सकते हैं। परंतु जिसके पास पैसा नहीं है फिर भी वह खा सकता है। इसी बात को यहां पर सुलेमान हमें बताता है। आगे हम पढ़ते हैं सवोपदेशक की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 पद में, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि धनवान मनुष्य दिन में 3 बार ही खाना खाता है। 1 बार में वह एक ही बिस्तर में सोता है और गरीब मनुष्य से अधिक नहीं जी पाता है, चाहे उसके पास कितने ही डॉक्टर क्यों ना हो। मरने पर वह अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाता है। कफन में जेब नहीं होती है। अय्यूब बहुत धनवान था, परंतु उसने कहा कि वह कुछ भी लेकर नहीं आया था और खाली हाथ ही लौट जाएगा। अतः जिससे आनंद प्राप्त ना हो उसका पीछा करने में समय लगाना व्यर्थ है, क्योंकि उसका मूल्य मरणोपरांत भी कुछ नहीं है। कुछ लोग इस निस्सारता या खोखलेपन में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि यहीं पर जीना है, मरना है, और वे सोचते हैं कि खाओ पियो और मस्त रहो, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि आप यहां से कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे। आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ खोखलेपन का नाटक है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप इस संसार में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक उद्देश्य के साथ में रचा है, ताकि हम उसके साथ उसके निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके उन आशीषों का आनंद उठाएं जिसने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। मेरे प्रियो, आइए आज हम उन बातों की ओर ना दौड़ें जो हमारे जीवन में लाभ नहीं देती, परंतु हम परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें, एक दूसरे की सहायता करें, और इतना ही नहीं, धन से संतुष्ट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यह अनुभव सुलेमान राजा का है जिसने इस पुस्तक को लिखा है, और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, फिर भी वह कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।